आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धानी ने शपथ लेने के बाद युवाओं से क्या वादा किया। साथ ही आपको बताएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राय जो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को लेकर जताई है। मॉनसून अपडेट भी होगा आज के पॉडकास्ट में। इन खबरों के अलावा हम बताएंगे कि आज से यूपी में छूट का दायरा कितना बढ़ा और केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से चल रहे आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या बताया। पॉडकास्ट के अंत में मध्य प्रदेश के आगरमालवा की एक बेहद रोचक खबर से आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसे एक भैंस ने अपने मालिक को बेगुनाह बताया। फिलहाल चलें पहली खबर की ओर। पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धामी के साथ सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंसीधर भगत और यशपाल आर्या ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने अरविंद पांडे और गणेश जोशी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनके अलावा रेखा आर्य, डॉक्टर धनसिंह रावत, यतीश्वरानंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुबह शिष्टाचार भेंट की। रविवार शाम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भागीरथीपुरम स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक में युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। धानी की अध्यक्षता में यहां राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि नौजवानों और बेरोजगारों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य की तात्कालिक ज़रूरतों के बारे में कुछ फैसले किए गए जिनसे राज्य को फायदा होगा। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना संक्रमण और उससे पैदा हुए रोजगार की समस्या पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के बीच काम कर रहा हूं और मैं मुद्दों को अच्छी तरह समझता हूं। कोविड ने उनकी आजीविका प्रभावित की है। हम उनके लिए स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और राज्य में रिक्त पदों पर युवाओं को नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स ए ब्रिजिंग इनिशिएटिव के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 वर्षों से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा है। हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं हैं। एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है, वे पहले से ही एक साथ हैं। उन्होंने कहा, संघ राजनीति से दूर रहता है, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, अगर हिंदू कहता है कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, और यह मैंने पहली बार नहीं कहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने रविवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून एक विराम के बाद एक बार फिर सक्रिय चरण में जाने को तैयार है और पूर्वानुमान मॉडल के संकेत दर्शाते हैं कि 8 जुलाई से बारिश संबंधी गतिविधियां तेज होंगी। उन्होंने कहा कि प्रारूपों में बंगाल की खाड़ी में मौसम तंत्र बनने के संकेत हैं। करीब 3 दशकों से दक्षिण पश्चिम मानसून पर अनुसंधान कर रहे राजीवन ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मॉनसून अपडेट। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रारूप 8 जुलाई से दक्षिण पश्चिम तटीय और पूर्व मध्य भारत में बारिश संबंधी गतिविधियों की वापसी वृद्धि का संकेत देते हैं। प्रारूप 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौसम तंत्र बनने और उसके बाद सक्रिय मॉनसून चरण के शुरुआती संकेत भी दे रहे हैं। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। उत्तर प्रदेश में कोविड 19 की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार यानी आज से छूट का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने सिनेमाघरों के संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन हर हाल में सिनेमाघरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को यह दिशा निर्देश जारी किया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने की इजाज़त सरकार ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थानों पर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की अनुमति दी गई है। स्विमिंग पूल अभी अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीने से दिल्ली बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सत्र शुरू होने के दो दिन पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, हम विपक्षी सांसदों से भी 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने को कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। हम उनसे कहेंगे कि संसद से बहिर्गमन कर केंद्र को लाभ न पहुंचाएं। जब तक सरकार इस मुद्दे का समाधान नहीं करती, तब तक सत्र नहीं चलने दें। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि जब तक वे हमारी मांगें नहीं सुनेंगे, हम संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन करेंगे। और अब सबसे रोचक खबर की ओर। आपने सिद्धार्थ और हंस की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें सिद्धार्थ के भाई देवदत्त ने अपने तीर से घायल हुए हंस पर अपना अधिकार जताया था, जबकि सिद्धार्थ का कहना था कि हंस उनका है क्योंकि उन्होंने ही उसकी जान बचाई है। बाद में मामला राजदरबार में पहुंचा था और फैसला दिया गया कि हंस जिसके पास खुद जाए वह उसी का होगा। दोनों भाई इस फैसले को स्वीकार करने को राजी हो गए थे। हंस ने तीर मारने वाले देवदत्त को छोड़कर जान बचाने वाले सिद्धार्थ की शरण ली थी। कुछ इसी से मिलता जुलता मामला शनिवार को मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के कानड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। इस थाना क्षेत्र के ग्राम सामगी में गोपाल गोस्वामी की भैंस 7 जून को चोरी हो गई थी। शनिवार को गोपाल गोस्वामी को जानकारी मिली कि माकड़ौन के रहने वाले कमल जाट के पास हूबहू वैसी ही भैंस है जैसी उनकी खो गई है। तब गोपाल गोस्वामी माकड़ौन पहुंच गए और कमल जाट की भैंस को अपनी बताने लगे। कमल जाट ने बार बार कहा कि यह भैंस उन्होंने माकड़ौन के रहने वाले राजेंद्र सिंह से खरीदी है, पर गोपाल उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तब यह मामला ग्राम पंचायत में पहुंचा। पंचों के निर्देश पर कमल जाट के घर से भैंस ग्राम पंचायत सामगी लाई गई। उसके बाद गोपाल के खेत पर भैंस छोड़ दी गई। भैंस को जब गोपाल ने घर की ओर ले जाने का प्रयास किया, तो भैंस ने गोपाल के घर जाने की बजाय रास्ता बदलकर अपने असली मालिक कमल के पास पहुंच गई। मामले में गोपाल का दावा था कि उन्होंने अपनी भैंस को बड़े लाड़ प्यार से रखा है, यह भैंस हूबहू उनकी भैंस जैसी है। ऐसे में यदि यह भैंस उनकी होगी तो वह ज़रूर उनके पास आ जाएगी। लेकिन भैंस के रास्ता बदलने के बाद सब कुछ साफ हो गया और वह अपने असली मालिक के साथ चली गई और सभी पक्ष संतुष्ट हो गए। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।